डॉक्टर भाटिया, ये बताइए कि 18 से 24 नवंबर तक जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक है, इसका क्या मतलब है? क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस?
एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जिनसे हम बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को ठीक करते आए हैं। पिछले 60-70 सालों में जब से ये दवाएं और एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई हैं, लाखों करोड़ों लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज़ेस या चूत की बीमारियों से निजात मिल सकी है। पर अब क्या हो रहा है कि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इन एंटीबायोटिक्स के एक्शन से मर नहीं रहे हैं। और उसका कारण यह है कि इन बैक्टीरिया ने, या जिन्हें हम आम भाषा में जर्म्स कहते हैं, अपने अंदर इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो एक इंसान को एक जर्म से बीमारी होती है, आप उसे एंटीबायोटिक्स की डोज देते हैं, पर उस इंसान की रिकवरी नहीं होती, उस इंसान का पूरा क्योर नहीं होता। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण आज की तारीख में ड्रग रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन बैक्टीरिया में है जो बहुत सी बीमारियां करते हैं।
क्या कारण है जिससे शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता? ये बैक्टीरिया ऐसे इस तरह की क्षमता इनकी विकसित हो जाती है, कारण क्या रहते हैं इनके?
देखिए, बड़ा बेसिक कारण तो यह है कि बैक्टीरिया या जर्म्स ने भी जिंदा रहना है। ये उनका एक जिंदा रहने का मैकेनिज्म है। तो वो समय समय पर अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाते रहते हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो उन पर नहीं होता। लेकिन जब उनके ऊपर हम खूब सारी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं जबकि जरूरत नहीं है, तो सिर्फ वो बैक्टीरिया सेलेक्ट हो जाते हैं जिनमें कि वो रेजिस्टेंस होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा एक सेंसिटिव पॉपुलेशन होती है बैक्टीरिया की, वो रिप्लेस हो जाती है एक रेजिस्टेंट पॉपुलेशन से। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज या एंटीबायोटिक्स का यूज वहां पर जहां नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा ड्राइवर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सेलेक्ट आउट करके फैलाने के लिए।
क्या इसके लिए हम इस तरह की दवाएं नहीं विकसित कर सकते जल्दी जल्दी, जो नए जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके खिलाफ वो काम कर सके, या उनको सही समय पे उससे इलाज किया जा सके?
बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। इसका उत्तर हाँ भी है और इसका उत्तर ना भी है। हाँ इसलिए है कि हाँ, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास नॉलेज है, उसको हम यूज करके अच्छी एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जो इन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। पर मैंने ये कहा था कि जवाब हाँ भी है और ना भी है। ना इसलिए है कि इस तरह की एंटीबायोटिक को बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 साल का समय चाहिए होता है और कम से कम $1 बिलियन की रिसर्च इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब आप ये देखिए कि एक प्राइवेट कंपनी ने या एक सरकार ने इतना पैसा लगा के इतने समय में एक एंटीबायोटिक बनाया और हम लोगों ने उसको फिर मिसयूज या अब्यूज या ओवर यूज करके 2-3 सालों में ही जर्म्स में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करा लिया, तो वो फिर से दोबारा यूजलेस हो जाती है और आपको फिर से इतना पैसा, इतना समय लगाना पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आज की तारीख में दुनिया में जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो नई दवाइयां बनाती हैं, वो इतना पैसा इसमें नहीं लगाना चाहती क्योंकि उनको इस पैसे पर रिटर्न नहीं मिलता। वो रिसर्च करना चाहती है उन बीमारियों में जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस का डर नहीं और जो लंबे टाइम तक वो दवाएं काम कर सकती हैं। ये दोनों कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चीज को समझने के लिए कि हम नए एंटीबायोटिक्स को डेवलप नहीं कर पा रहे। हालांकि पिछले 30 सालों में अगर आप देखें तो जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक की क्लास, मीन्स पूरा एक नया ग्रुप, ऐसा एक भी नया ग्रुप या नई क्लास एंटीबायोटिक की हम नहीं बना पाए हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है जिसमें कि दुनिया आगे बढ़ रही है और उस खतरे पर पहुंचने जा रही है जहां ये एंटीबायोटिक्स का असर पूरा जर्म्स के ऊपर खत्म हो जाएगा।
तो जानवरों को और पौधों को भी पालन के दौरान कई तरह के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, चाहे वो कीटनाशकों के रूप में हो या जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हो। गाय भैंसों में तो दूध के ज्यादा उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या इन सबसे इनडायरेक्टली इंसान के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है?
इनडायरेक्टली क्योंकि डायरेक्टली पड़ता है। ऑक्सीटोसिन का आपने नाम लिया, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है और उस हार्मोन को अगर हम दूध में डालें और वो दूध बच्चे या लड़कियां पिए तो वो नेचुरली जो ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट एनिमल्स में आता है दूध बनाने की क्षमता का, वो इंसानों में भी होना शुरू हो जाता है। पर हमारा आज का विषय एंटीबायोटिक पर है। ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पर कि बहुत ज्यादा सैनिटेशन और बहुत ज्यादा हाइजीन और सफाई नहीं है जहाँ पर कि जानवरों को रखा जाता है, तो वो उन चीजों से उन पर कोई बीमारी ना आए तो उन्हें एंटीबायोटिक्स बिना किसी बीमारी के भी प्रोफिलेक्टिकली दे दिया जाता है। अब उससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक का पूरा डोज तो उनको मिला नहीं, लेकिन जो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के कॉन्टेक्ट में आते हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और ये अब पक्का हो चुका है कि जानवरों से इंसान में और इंसान से जानवरों में वही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मूव करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। गाय और भैंस वगैरह में एक बीमारी होती है जिसमें उनके दूध के स्तन में इंफेक्शन आ जाती है जिसे मेस्टाइटिस कहते हैं, और वो दूध के जरिए या हाथों के जरिए या एनवायरमेंट के जरिए जो बैक्टीरिया उसे जानवरों में करते हैं वही बैक्टीरिया हम इंसानों में आकर निमोनिया कर देते हैं, मेनिनजाइटिस कर देते हैं, हमारे वूंड इंफेक्शन को खराब कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमारे और इंसान जानवरों के साथ रहने की वजह से इन बैक्टीरिया का मूवमेंट बिटवीन बोथ दीज टू ह्यूमन एंड एनिमल्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। तो हमारे लिए पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है अगर हम एनिमल्स में इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या जहां नहीं जरूरत है वहां एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें।
तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है? दुनिया भर में समस्या को लेकर किस तरह से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास हो रहे हैं?
देखिए दुनिया ने तो अब इस चीज को बहुत बड़ी समस्या मान लिया है, रादर बहुत सी इंस्टीट्यूट्स तो अब ये कहते हैं कि इंफेक्शियस डिजीज़ में सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में दुनिया के सामने जो है वो ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जहां पर हम एंटीबायोटिक्स के होने से पहले थे, मींस प्री एंटीबायोटिक इरा में पहुंचने जा रहे हैं। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी आपके सामने? आप एक बहुत अच्छी हार्ट सर्जरी करवाते हैं लेकिन उसके बाद जो आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उसका कोई असर नहीं होगा, तो जो इतनी अच्छी सर्जरी हुई है उसका भी असर नहीं आएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं आजकल, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, पर हर किसी में एंटीबायोटिक्स का अहम रोल है। लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी, तो ये जो बड़ी बड़ी सर्जरीज की हम बातें करते हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। इस चीज की वजह से अब क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को महंगी दवाइयां लेनी पड़ रही है, बहुत से लोगों को लंबे टाइम तक हॉस्पिटल्स में रहना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, और ये अब एक चिंता का विषय बन गया है इंटरनेशनल लेवल पर। पिछले 3-2 साल पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इस विषय पर बात करी। आज जितने बड़े बड़े ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक G7, G20, G77, आसियान, इन सब में इस विषय पर बात हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड इशू अब नहीं रहा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू बन गया है, ह्यूमन इकोनॉमी से रिलेटेड इशू बन गया है। तो इसकी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, और इसी इंपॉर्टेंस के वजह से WHO, FAO और OIE, ये तीनों जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्लोबल एक्शन प्लान 2015 में बनाया, जो सबके सब मेंबर स्टेट्स ने, 194 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने सबने उसको अप्रूव किया, और सबने ये कहा कि हम 2 साल के अंदर अपने अपने कंट्री के लिए ऐसा ही एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। तो इंडिया में भी हमने अप्रैल 2017 में ये नेशनल एक्शन प्लान बना लिया था, और अब उस नेशनल एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने का काम शुरू हो रहा है।